प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम विशेष करके यशाया के द्वारा कहे गए उन भविष्यवाणियों को देख रहे हैं जिसे उसने इसराइल और यहूदा के लिए कहे थे। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम आज पृथ्वी पर जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपने अनुग्रह दें और विशेष करके उनके लिए हमारी प्रार्थना है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के मानसिक दबाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, आज के वचन से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, परमेश्वर इसराइल से अप्रसन्न था जिसके 6 कारण थे। पहला कारण था उनका लोभ। वे धनवान बनना चाहते थे, वे दीन जनों का शोषण करते थे। परमेश्वर का दूसरा आरोप है जिसे हम यशाया 5 अध्याय उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसली और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के कामों को नहीं देखते। ध्यान दीजिए, उनका दूसरा पाप था मदिरा पान और भोग विलास। यह राष्ट्रीय स्तर पर पाप था जिसके कारण उनकी आत्मिक अंतर्दृष्टि जाती रही है। आज हमारे देश में भी शराबियों के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। दुर्घटनाएं होती है और दुर्घटनाओं का एक ही कारण होता है और वह है वाहन चालक जो शराब पी करके वाहन चलाते हैं। शराब राष्ट्र के नैतिक स्तर को गिरा देती है। शराब देश का कैंसर है। ऐसा देश बाहर के वैरी का आसान से शिकार होता है। यशाया 5 उसके 13 अध्याय में लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। मेरे मित्रों, आज मनुष्य के विचार में शराब पीना व्यवहार कुशलता का बड़प्पन है। अमेरिका के व्यवसायियों में काम करने वाले एक संस्था के निदेशक से पूछा गया, माता पिता अपनी संतान को व्यवसाय से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वह विश्वासी नहीं प्रतीत होता है। उसका उत्तर था, माता पिता घर में जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु औषधियां और शराब का उपयोग न करें। उसने यह भी कहा कि सामाजिक मदिरा पान में बुराई नहीं है, परंतु मनुष्य देखा देखी सीखता है। वे युवक युवतियां जो नशे के वातावरण में बड़े होते हैं, वे समस्याओं के आने पर नशा करने से नहीं चूकते हैं। यदि आप शराब को स्वीकार करते हैं तो आपकी संतान को कभी नशे में देखकर आश्चर्य आप न करें। प्रश्न तो यह है कि आप मदिरा पान क्यों करते हैं? युवाओं का अभ्यास घर से ही आरंभ होता है। जब माता पिता जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए मदिरा का सहारा लेते हैं, यही तो परिवार और देश के पतन का कारण होता है। शराब के कारण ही इसराइल का भी विनाश हुआ था। यशाया 5:14 में लिखा है, इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम पसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। अधोलोक का अर्थ है कब्र। इसे अग्निकुंड या नरक न समझें। अतः यह है, कब्र ने अपना मुंह खोला है। नीति वचन में भी यही शब्द नीति वचन 30:16 में मिलता है। अधोलोक और बांज की कोख, भूमि जो जल पीकर तृप्त नहीं होती और आग जो कभी नहीं कहती बस। मृत्यु और कब्र कभी बस नहीं कहती है। अधोलोक को मृत्यु या कब्र भी कहा जा सकता है। आप किसी की कब्र के निकट खड़े हो तो एक प्रश्न अवश्य पूछें, वह कहाँ है? अय्यूब 14:10 में अय्यूब ने पूछा, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर एक मनुष्य को पूछना चाहिए। आरंभ में तो नरक के स्थान का विचार या स्थान से संबंधित नहीं था, परंतु जब मनुष्य ने यह जाना कि परमेश्वर स्वर्ग में है तो नरक नीचे ही होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11:23 में प्रभु यीशु ने अधोलोक शब्द का प्रयोग किया है। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। यहाँ यीशु भूमि के नीचे होने की बात नहीं कर रहा था। उसके कहने का अर्थ था कफरनहूम का विनाश होगा। आज आप उसके खंडहर को देखें तो आप प्रभु यीशु के वचनों की सत्यता को समझेंगे। हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि हम नैतिकता की दिशा निर्धारित करते हैं, परमेश्वर ऊपर और नरक नीचे। यशाया के कहने का अर्थ था कि इसराइल गिराया जाएगा, वे बंधुआई में जाएंगे, वे कब्र में जाएंगे और उनकी महिमा मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी महिमा के अंत का कारण होगा उनका शराब पीना और भोग विलास में लीन रहना। रडयार्ड किपलिंग एक भविष्यद्वक्ता और एक कवि था। उसने एक कविता लिखी, देखो कल का वैभव नीनवे और सूर का सा हो गया। मेरे मित्रों, हम नीति वचन 5:18 में पढ़ते हैं, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्सी से खींच ले आते हैं। इसका अर्थ है, हाय उन पर जिनकी दुष्टता झूठ के सहारे पर है और जो अपने घमंड और अविश्वास के कारण परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं। आप इससे एक कविता तैयार कर सकते हैं। यह उनकी तीसरी हाय या पाप है। यह एक राष्ट्र का चित्रण है जो विवेकहीनता और निर्लजता से पाप में मग्न है। यशाया 5:19 में लिखा है, जो कहते हैं वह फुर्ती करें और अपने काम को शीघ्र करें कि हम उसको देखें और इसराइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझें। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर को चुनौती देते हैं कि उनके पाप के लिए कुछ भी करें। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि दंड का उल्लेख नहीं है। यह मौन अति भयानक है। दंड ऐसा भयानक है कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इसराइल का बेबीलोन ले जाया जाना इतिहास में ऐसा भयानक था कि वह परमेश्वर को चुनौती देने और दंड की चिंता किए बिना पाप करने के लिए परमेश्वर के दंड को प्रकट करता है। मेरे मित्रों, आपको भजन संहिता 137 स्मरण होगा, इसराइल बेबीलोन के विरुद्ध परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का बदला चुकाया जाए। भजन संहिता 137 उसके 9 पद में लिखा है, क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। यह एक अत्यधिक निर्दयता का काम था, परंतु परमेश्वर ने इसराइल को दंड दिया। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, परंतु जब आप उसे चुनौती दें और उससे मुंह मोड़ लें तो फिर आपके लिए आशा नहीं है, दंड अवश्य मिलेगा। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्हें देखकर आप इससे इनकार नहीं कर सकते। यदि आप आंखें बंद कर लें तो बात कुछ और ही है। यशाया 5 उसके 20 पद में लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। मेरे मित्रों, यह चौथा पाप है जिस पर हाय है, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के सही और गलत के मानदंड को बदलना। परमेश्वर को मानने वाला देश जब समृद्ध होकर परमेश्वर से दूर हो जाता है तब वह ऐसी ही उलझन में पड़ जाता है। आज विवाह के मानकों में भी यही उलझन पैदा हो गई है। मैंने एक युवती को टीवी पर सुना कि वह बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रह रही थी। उसका तर्क था कि विवाह करना झूठा दिखावा है, वह सत्यनिष्ठ रहना चाहती थी। मेरे मित्रों, वह वास्तव में ढोंगी थी, वह सत्यनिष्ठ नहीं थी। परमेश्वर के अनुसार वह व्यभिचारिणी थी और उसका पुरुष व्यभिचारी था। यशाया 5 अध्याय के 21 पद में लिखा है, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। यह पांचवा पाप है जिस पर हाय है, घमंड का पाप। परमेश्वर घमंड से बहुत अधिक घृणा करता है। नीति वचन 6 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। पहला तिमोथियुस 3 अध्याय उसके 6 पद में पौलुस लिखता है कि घमंड शैतान का पाप था। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। परमेश्वर की घृणित वस्तुओं की सूची में घमंड का पहला स्थान है। मेरे मित्रों, यशाया 5 उसके 22 और 23 पद में हम आगे पढ़ते हैं, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। यह छठवीं और अंतिम हाय है। वे शराब के नशे में ऐसे सुस्त हो जाते थे कि वे न्याय का विवेक ही खो देते थे। अन्याय और दुष्टता का बोलबाला था और धर्मी जन पर झूठा आरोप लगाया जाता था, जैसा कि आज भी होता है। कोई भी देश जो नैतिकता के स्तर से इतना गिर जाए कि उसे सदाचार की चिंता ना हो तो वह अधिक दिन स्थिर नहीं रहेगा। आज मनुष्य सही को गलत और गलत को सही कहता है। मैं अपने युवावस्था को स्मरण करता हूं जब मैं एक नाटक मंडली में था। मुझे अपने नाटक की एक पंक्ति अब भी याद है, गलत गलत है, होने से विनाश तक चाहे स्वर्गदूत समय से अधिक परिश्रम कर ले तो वे भी इसे न तो बदल सकते हैं और न ही बाल के बराबर कम कर सकते हैं। मेरे मित्रों, गलत तो आज भी गलत ही है। सफेद को आप काला नहीं बना सकते या कह नहीं सकते सफेद सफेद है और काला काला है। यशाया 5 अध्याय के 24 पद में लिखा है, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इसराइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है, पतन और क्षय की क्रिया चाहे धीरे धीरे हो, दिखाई न दे, दंड भस्म करने वाली आग की तरह आता है और टलता नहीं। यह परमेश्वर का क्रोध है जो दंड रूप में आता है। यह अंतिम दिनों में परमेश्वर के भयानक दंड की ओर संकेत करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 20 पद में प्रभु यीशु ने कहा, वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए। जी हाँ, वह यशाया 42 अध्याय के 3 से संदर्भ दे रहा था। कुछ पाप मनुष्य पर अपना ही दंड लाते हैं, जैसे शराब पीने से और नशीली वस्तुओं का सेवन करने से होता है। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ, उनके अपने जीवन में और उनके पारिवारिक जीवन में इस पाप के कारण विनाश आया। आज भी बहुत सारे परिवार विनाश की ओर जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण, शराब के कारण। हमारे जवान भाई बहन इसकी ओर बर्बाद हो रहे हैं। मेरे मित्रों, इसमें परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। धुआं देती हुई बत्ती जल गई और कुचला हुआ सरकंडा मर गया। हम जो पाप करते हैं वही हमें नष्ट करेगा। मेरा एक मित्र है, वह दंत विशेषज्ञ है। उसने मुझे वर्षों पूर्व की एक घटना सुनाई। नगर का एक नामी डॉक्टर नशीली पदार्थों का धंधा करता था। उसकी प्रतिष्ठा के कारण कानून के हाथ उस तक नहीं पहुंच पाते थे। उस डॉक्टर ने नशीले पदार्थ की कीमत बढ़ाने के लिए आपूर्ति रोक दी और उसे अधिक कीमत मिलने लगी। नशीले पदार्थों की आपूर्ति रोकने तक उसे अपने पुत्र और पुत्री के व्यवसायनी होने का ज्ञान नहीं था। अपनी ही संतान को नशे का आदि देख उसे ऐसा आघात पहुंचा कि वह शीघ्र ही मर गया। आवश्यक नहीं कि परमेश्वर हर बार दंड अपने हाथ में ले। कई बार वह पाप को अपना काम करने देता है। आज शराब का पाप चारों ओर है। परमेश्वर को इस विषय में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। शराब अपना दंड स्वयं ले आएगी। उसका दंड मनुष्य विशेष को ही नहीं, संपूर्ण देश को भुगतना होगा। हमें देखना है और हम देखते आ रहे हैं कि शराब का सेवन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मेरे मित्रों, मैंने कुछ शराबियों को प्रभु यीशु को ग्रहण करते हुए भी देखा है, परंतु कुछ लोग मन परिवर्तन के बाद भी लौट जाते हैं। पौलुस रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 12 पद में यही कहता है, हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। दूसरे शब्दों में, शरीर को अपनी इच्छा पूरी न करने दें। अपने घर में बोतल न रखें, बोतल को तोड़ दें। हम पाप के विषय में अपने आप से धोखा करते हैं, परंतु कुछ पाप हम सब पर प्रभुता करता है। यशाया 5 उसके 25 पद में लिखा है, इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है, और पहाड़ कांप उठे और लोगों के शव सड़कों के बीच कूड़ा से पड़े हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है। यह पद उन लोगों के लिए विचित्र प्रतीत होगा जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर का प्रेम सच्चा है। आप उसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते हैं। परंतु मेरे मित्रों, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। यदि आप उससे प्रेम करेंगे तो भी वह आपसे प्रेम करेगा, परंतु आप उसके दंड का विचार मन से ना निकाल दें। परमेश्वर का क्रोध उसकी प्रजा पर भड़का है, उनके पड़ोसी राष्ट्रों पर नहीं। उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है। यदि इस्राएल परमेश्वर के निकट आ जाता और उस पर भरोसा रखता तो वह उन्हें बचा लेता। यशाया की पुस्तक में परमेश्वर के दंड का वर्णन है, परंतु उसके अनुग्रह का भी उल्लेख किया गया है। परमेश्वर की व्यवस्था और उसका अनुग्रह परस्पर विरोधी नहीं है। यदि आप पाप में रहना चाहते हैं, यदि आप उसके अनुग्रह को अस्वीकार करते हैं, तो आप परमेश्वर की व्यवस्था को देखेंगे कि वह कैसी है। शेष अध्याय में हम परमेश्वर के दंड का भंडारण को देखेंगे। यशाया 5 उसके 30 पद में लिखा है, उस समय वे उन पर समुद्र के गर्जन के समान गर्जेंगे, और यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा, और ज्योति मेघों से छिप जाएगी। आज के इसराइल देश को ध्यान से देखें। इसराइल का भ्रमण करने वाले कहते हैं वह निश्चय ही अति अद्भुत प्रदेश है। हम भविष्यवाणी की पूर्ति को देख सकते हैं, वे फिर से अपने देश पर अधिकार कर रहे हैं, परंतु मैं उसे ऐसा नहीं देख पा रहा हूं। मैं अंधकार से घिरे हुए लोगों को देख रहा हूं, मैं परमेश्वर से रहित लोगों को देख रहा हूं, मैं अशांति में वास करने वालों को देखता हूं जिन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। वे भय में वास कर रहे हैं, उस देश में उन्हें खतरा है। यह परमेश्वर का दंड है। मेरे मित्रों, आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी बातें हैं। हम परमेश्वर के निकट अपना जीवन डर और भय में नहीं बिता रहे हैं, और हम उन्हीं कार्यों को कर रहे हैं जिसे परमेश्वर अप्रसन्न होता है। और निश्चय जानिए कि इसका दंड मुझे और आपको अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। जितना अधिक वह मुझसे प्रेम करता है, उतना ही अधिक वह दंड भी देना जानता है। क्या आज आप किसी प्रकार के पाप में जीवन जी रहे हैं? हो सकता है आपको नशे की आदत है जो आपके शरीर को दुर्बल बना रही है। हो सकता है कि आप व्यभिचारी जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि आप में घमंड है, ईर्ष्या है। आज परमेश्वर के पास आए और कहें, प्रभु मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूं, मैं इस दंड का भागी होना नहीं चाहती, आप मेरी मदद करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हे प्रभु ये।